نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان کہ ہم سب یہاں بیٹھے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے دل کے امتحانات کے کیا مقامات ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے. بہت ساروں کو تو ماشاءاللہ خود سے ہی پتہ چل گیا ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو شاید نہ پتہ چلا ہو, تو میں اردو میں اس آیت کا ترجمہ رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل, کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے مراد یہ کہ جبرائیل کی دشمنی سے کچھ نہیں ملے گا, وہ تو صرف ایک میسنجر ہیں, ایک پیغام رساں ہیں. اصل میں تو یہ قرآن اللہ آپ کے دل پہ نازل کرتا ہے, اور یہ قرآن کیا ہے, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, مراجعہ کے تورات اور انجیل اور جو پہلے سے کتابیں تھیں ان میں جو باتیں تھیں قرآن پاک اس کے خلاف نہیں ہیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ قرآن پاک ان کتابوں کے مقابلے پہ نہیں آیا, کنڈیم کرنے نہیں آیا. یہود کو ایک بہت بڑا مغالطہ لگا, اور وہ کیا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے پہ آ گئے ہیں. شیطان اکثر دینداروں کے دلوں میں ایسے ہی خیالات ڈالتا ہے کہ شاید جو کام ہو رہا ہے اس کے مقابلے پہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تو کوئی اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے, یہ قرآن کہاں کب کیسے نازل ہوگا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور قرآن پہلی کتابوں کی حمایت میں ہے, کوئی بھی دین کا کام جو کرتا ہے وہ پہلے سے دین کا کام کرنے والے ہی کا ہاتھ بٹاتا ہے کہ دیکھو تم سے اکیلے صفائی نہیں ہو رہی, آؤ مل کے کرتے ہیں. کیونکہ اگر نظر صفائی پہ ہوگی نا, تزکیہ اور طہارت پہ ہوگی تو انسان تو خوش ہوگا. بس اگر ہم سب کہیں کہ ہم اس ہال کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو دو لوگ کریں گے تو شاید چار دن لگ جائیں, اور اگر چھ لوگ لگیں گے تو دو تین گھنٹے میں ہو جائے گا. تو خوش ہوں گے نا زیادہ لوگ اس مسجد کو صاف کریں گے. یاد رکھیے گا کہ دین کا کام کرنے والوں کی نیت اور ارادہ ہمیشہ اصلاح کا ہونا چاہیے. ہم اس کام کے ذریعے سے لوگوں کی, معاشروں کی, علاقوں کی تطہیر کریں گے, تو جب دوسرے لوگ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں تو ان کو تو بہت خوشی ہوگی. تو جبرائیل علیہ السلام کی بات بنا کر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمی آ چکی تھی اس کا ازالہ کیا. پھر دوسری بات اس قرآن پاک کی خوبی کی کیا بیان کی کہ قرآن کیا ہے, جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, وہ ہدن, ہدایت ہے. یہ وہی قرآن ہے جو اس وقت میرے آپ کے سامنے ہے. ہم سب اگر اپنے آپ کو دیکھیں, ہمارے بھی گھروں میں وہی قرآن ہے جو ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور طلحہ اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام کے گھروں میں تھا. انہوں نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا تھا, آج ہم نے اس کتاب کو برکت کی کتاب بنا لیا, وظائف کی کتاب بنا لیا, جن اور بھوت بگانے کا ذریعہ بنا لیا, اور ہم نے اس کتاب سے بہت کچھ لیا. یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے اگر ہم اس کو کتاب ہدایت بھی بنائیں. ہر چیز کا ایک مین مقصد ہوتا ہے اور کچھ سائیڈ ایشوز ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ایک تو اصل چیز بنتی ہے, پھر اس کے ساتھ کچھ بھی اور بھی بن جاتا ہے. اگر آپ نے میں نے اس قرآن سے ہدایت نہ لی تو ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی شخص ریفریجریٹر خریدے اور اس کو الماری بنا لے, چلو اس میں مٹی نہیں جاتی, خوبصورت ہے, اچھی لگتی ہے, اب اس کے پیچھے سے بٹن آن نہ کرے, تو کیا اس نے اس فریج کا حق ادا کیا؟ इससे तो बहुत सस्ती अलमारी, उसको वैसे 10 अलमारियां मिल जाने थी जितने में उसने एक फ्रिज लिया, लेकिन बाद में उसका मकसद हासिल ना हुआ। बस एक ही मिसाल काफ़ी है। जब तक हम इस किताब को हिदायत की किताब नहीं बनाएंगे, जो बुनियादी मकसद है इस किताब का, वो हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो आज से अपना मुहासबा करना है कि क्या ये कुरान मेरे लिए हिदायत की किताब है कि नहीं। अभी यहाँ आने से पहले, और जो लोग ऑनलाइन पे सुन रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 20 मिनट पहले एक क्लास पूरी हुई है दीन और दुनिया के नाम पे। आप में से कितने लोग इस कोर्स से आगाह हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोगों को पता है। आज के पारे का मौजू क्या था? बतर, दिखावा। कल के पारे का मौजू क्या था? तकब्बुर, किबर, खुद को बड़ा समझना। आठवें पारे का टॉपिक क्या था? अना, आई एम, ईगो। सातवें पारे का टॉपिक क्या था? सिद्क। छठे का क्या टॉपिक था? जाहिलियत। पांचवें का क्या था? खयानत। चौथे का क्या था? गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। तीसरे का क्या था? बुखल। दूसरे का क्या था? सब्र। पहले का क्या था? हसद। ये है हुदम हिदायत। कुरान पढ़ने को अगर आपने, मैंने अपने अमल की नियत से ना लिया, तो याद रखिए कि हमारा हाल यह है कि कोई तोप ले ले और उससे मक्खियाँ मारे, मच्छर मारे, वो तो उसके वैसे ही मर जाने थे। आज हम मुसलमानों ने इस किताब के साथ बहुत ज़्यादती की है। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमारी इसलाह कर दे। और इस कुरान की खूबी क्या है? वह बुशरा लिल मोमिनीन, खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। ग्लैड टाइडिंग। कुरान क्या है? खुशखबरियां देता है किन को? ईमान वालों को। इस आयत में अगर आप गौर से देखें तो इस कुरान पाक की तीन बड़ी बड़ी खूबियां बयान हुई हैं, लेकिन इस वक्त उस पे बात नहीं करनी। आज जो मौजू है हमारे पास वो क्या है कि कुरान और दिल। अल्लाह के नबी सल्लम के दिल को अल्लाह ने कुरान के नज़ूल के लिए क्यों चुना? सूरत हशर के आखिरी रुकू में आता है, वलौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहू ख़ाशियम मुतसद्दियम मिन ख़शयतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते कि वो पहाड़ कांपने लगता, थर थराने लगता, शेक भी होता, शिवर भी करता। क्यों? मिन ख़शयतिल्लाह। जो बोझ पहाड़ ना सह सके वो कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सह लिया। कुरान का असल महल दिल है। जब तक आपके मेरे दिल पर कुरान का असर नहीं होगा, उलामा इकबाल ने भी कहा ना कि जब तक तेरे दिल पे ना हो नज़ूले कुरान, फिर तुझे राज़ी और कुशाफ जैसी बड़ी बड़ी तफसीरों से भी फ़ायदा नहीं हो सकता। तो दिल जिस्म में बहुत ही खूबसूरत उज़्व है, हाथों में लिए पकड़ते हैं, 14 फरवरी को तो दिल सड़कों पे बिकते हैं। दिल बड़ा मशहूर आर्गन है, फिल्मों में भी दिल है, ड्रामों में भी दिल है, और पाकिस्तान भी दिल दिल पाकिस्तान है। तस्वीर भी बनती है अक्सर तो दिल की है। आप जितने गैजेट्स देखें उसमें इमोशंस में ज़्यादा दिल है। ये दिल ने ही तो मुश्किल डाली हुई है, आप भी तो दिल की वजह से इधर बैठे हैं। तो आइए ज़रा सा देखते हैं कि इस दिल जिसको इतनी अहमियत हासिल है हमारे जिस्म में, क्या अल्लाह ने इसका कोई इम्तिहान भी रखा है? हर चीज़ का इम्तिहान होता है, याद रखिए। अक्ल का इम्तिहान होता है, आँखों का इम्तिहान होता है, कानों का इम्तिहान होता है। क्या अक्ल का इम्तिहान जाए कि सोचते क्या हो, तुम्हारी अक्ल में क्या कुछ समाया हुआ है? आँखों का इम्तिहान जाए कि आँखों को ख़राब चीज़ों से रोकते हो कि नहीं? कानों का इम्तिहान जाए कि गलत चीज़ों को मत सुनने दो? तो क्या दिल का भी कोई इम्तिहान है? बिल्कुल है। आप देखिए कि बास लोग जब भी दिल की और दिल के इम्तिहान की बात करते सुनते हैं, फौरन उनकी तवज्जो जाती है, हाँ दिल का इम्तिहान क्या है कि ख्वाहिशात। ख्वाहिशात जो है ना, ये दिल का बड़ा इम्तिहान है। डिज़ायर्स और नाफरमानी, डिसोबीडियंस। हम गलत काम करते हैं तो ये हमारे दिल की एक किस्म की आजमाइश होती है। हालांकि आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने इससे बढ़कर दिल के बहुत सारे और इम्तिहान रखे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत अल-अंबिया की आयत 35 में फरमाते हैं, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। हम तुम्हें खैर और शर में बतौर इम्तिहान के मुब्तला करते हैं। तो पहली बात, अब आपकी मेरी पूरी 100% तवज्जो चाहिए, सब छोड़ दें, बिल्कुल आप और आपका दिल, मैं और मेरा दिल। मेरे दिल में सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने जो फरमा दी आज की हमारी इस गुफ्तगु में, हम जिसका ज़िक्र कर रहे हैं, हर खैर और शर, खुशी भी जो मिलती है आपको मुझे, और जो गम बीमारी तकलीफ़ भी आती है, इसमें हमारा इम्तिहान होता है। यहाँ बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी का कोई वाक्या याद करें। कोई बीमारी आई आज तक? कई दफ़ा आई होगी। बच्चा बीमार हुआ, माँ बाप में से कोई बीमार हुआ। हर शर दिल का इम्तिहान है। अच्छा, जब कोई तकलीफ़ और बीमारी आती है तो हम 90% समझते हैं कि ये इम्तिहान है। लोग भी आके कहते हैं सब्र करो ना, चलो अल्लाह कर देगा, बीमार हो सब्र कर लो, कोई फौत हो गया सब्र कर लो। लेकिन इससे भी बड़ा इम्तिहान क्या है, इसको अक्सर लोग इम्तिहान नहीं समझते। मैं छोटी सी मिसाल दे के फिर बात करती हूँ। आप सब पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक एफए बीए कुछ ना कुछ पढ़ा ना। आप देखिए कि सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट्स लाजमी होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते पर्चे में से, कुछ में चॉइस होती है। अच्छा, मैं दो तीन नाम बोलती हूँ, आपके चेहरे से मुझे पता चल जाएगा कि जिस दिन वो पेपर होता था आपको कैसा लगता था। मैथमेटिक्स, या आप हंस रहे हैं उस वक्त कोई नहीं हंसता। अक्सर लोगों को मैथ का पेपर मुश्किल लगता है। चलिए केमिस्ट्री, अच्छा जी उर्दू रिलैक्स है ना, और कौन सा होम इकोनॉमिक्स, और वो कौन सा इम्तिहान है जो बगैर पढ़े देते थे। अल्लाह अकबर कबीरा है। बस जिस तरह हमने भी बात की है ना, कुछ सब्जेक्ट्स को हम बहुत बड़ा इम्तिहान समझते हैं, फिक्र लगी हुई है, हाय कल इंग्लिश का पेपर है, हाय इंग्लिश का पेपर है। शेक्सपियर की रूह कोई साले सवाब देने के लिए रो रो के इंग्लिश के जुमले याद करते हैं, करते थे ना, हाय मैथ हाय मैथ हाय मैथ। कुछ सब्जेक्ट्स को हम बहुत बड़ा इम्तिहान समझते हैं, तैयारी भी करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करके दाल दलिया गुजारा पास तो हो ही जाता है बंदा। लेकिन कुछ इम्तिहानों को हम कहते हैं इसमें क्या पढ़ना, ये तो बड़ी शर्म की बात है अगर हम पढ़ने बैठ गए। बस इस मिसाल को यहाँ फिट कीजिए। तकलीफ, परेशानी, बीमारी, दुख, इनको हम इम्तिहान समझते हैं। रोते भी हैं, धोते भी हैं, दुखी भी होते हैं, चेहरे से भी लग रहा होता है, दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं, बट जिसको हम इम्तिहान ही नहीं समझते, आसान समझते हैं, हालांकि वो इम्तिहान उससे बहुत सख्त, मुश्किल और जिसमें बहुत कम लोग पास होते हैं, और वो है खुशी का इम्तिहान। वनबलूकुम बिश्शर्री वल खैरि फितना, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खैर में भी और शर में भी। खुशी का जब वक्त आता है ना हम भूल जाते हैं, तकलीफ़ के वक्त को हम मानते हैं। इसीलिए अब देखिए कि मैयत अलग घर में कोई ख़िलाफ़ शरीयत काम नहीं हो रहा होता, इल्ला ये कि कोई लाइलबी की वजह से लोग कुछ बिदात कर लें, वो भी एक ना समझी होती है, कोई जान के तो नहीं करता। कभी किसी ने मैयत वाले घर में ये नहीं कहा कि सेग्रीगेशन क्यों है, ये क्या बात है कि औरतें कहीं बैठे मर्द कहाँ बैठे, दिल कहाँ लगेगा मर्द बेचारों का अपने घर वालों के बगैर बैठ के, यानी सारा दिल ही वहीं लगना है। गम में कोई भी इंसान का मुतालबा नहीं होता, लेकिन खुशी के मौके पे ये कैसे और वो कैसे, और आज का दौर और कल का दौर, और बच्चों की खुशियाँ बड़ों की खुशियाँ। तो एक जुमला लिखिए, हर नेमत इम्तिहान का पर्चा। अब यहाँ मुझे बोलने दीजिए, आपका हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा। अपने चार बच्चों का, पांच है, तीन है, दो है, छः हैं, जितने भी, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनका नाम लेकर बोलिए कि ये बच्चा मेरे इम्तिहान का पर्चा है। मूसा मेरे इम्तिहान का पर्चा, ईसा मेरे इम्तिहान का पर्चा, अब्दुल्ला मेरे इम्तिहान का पर्चा, और हुज़ैफ़ा मेरे इम्तिहान का पर्चा, जो नाम है, सलमा मेरे इम्तिहान का पर्चा, आयशा मेरे इम्तिहान का पर्चा। अगर आप और मैं अपने हर पर्चे में पास ना हुए तो क्या अगली जमात मिल जाएगी? सप्ली आ जाए तो क्या अगले दर्जे पे पहुंचे जाते हैं? चंद सेकंड के लिए सोचिए, हम जन्नत में पहुंच जाएं और हमें वहां जाकर पता चले वो एक बच्चा तो आया ही नहीं, क्या तीन चार जो साथ गए उनके जाने की खुशी होगी? माएं तो एक बच्चे ने खाना ना खाया हो तो उनके गले से नहीं उतरता जब तक वो भी आके खा ना ले। सारे घर में एक नहीं आया, माँ उसी को पूछती है पता नहीं किधर है, खैर उसे, हाय मेरा बच्चा किधर है, चैन तो नहीं आता। हम कहीं घूमने फिरने खूबसूरत मज़े की अच्छी से अच्छी जगह पे गए हों, कोई एक अपना प्यारा साथ ना हो। एक माँ है उसके चार छः बच्चे हैं, सब आगे शादी में एक नहीं आई तो वो बूढ़ी माँ बैठ के उसको याद करती रहेगी, हाय वो नहीं आई, हाय मेरी बच्ची नहीं आई, हाय वो याद आ रही है। तो वो जन्नत क्या जन्नत होगी जिसमें हमारी औलादें ना जाए, हमारे भाई बहनों में से कोई एक ना जाए, सोच के भी दिल को कुछ होता है? हमारी दोस्तों में कोई ना गया, हमारे प्यारे प्यारे साथियों में से कोई ना गया, तो क्या पता चला आज इस दुनिया में इस बात की फिक्र करनी है कि हमने अपने प्यारों को अपने साथ साथ रखना है, खैर के कामों में भी अच्छे कामों में, और जिस तरह खुद बुराइयों से परहेज़ करते हैं दूसरों को भी परहेज़ कराना है। होता क्या, हम कहते हैं क्या करें फिर और क्या कहें, सबको ही पता है। बस आप देखिए कि आप अपने बच्चे को फजर की नमाज के लिए नहीं उठाती क्या कहकर, उसको भी तो पता ही है ना अब बड़ा हो गया है खुद उठे, लेकिन उसी बच्चे को अब स्कूल कॉलेज जाने के लिए उठाते हैं 7-8 बजे, अब क्यों नहीं वो खुद उठ रहा? आपको गम यह है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं एक साल की और फीसें ना देनी पड़ जाए, है ना ये बातें? तो फिर जो बात अभी तक हमने की है उसका खुलासा ले लीजिए मुझसे कि अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको मुझे खैर और शर में आजमाया। जब आपकी ज़िंदगी में कोई गम आता है बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप 100/100 नंबर ले लें, सब्र भी कर लें, शुक्र भी कर लें, नमाजें भी उस दिन वक्त पे पढ़ी जाती हैं, उस दिन कोई वज़ाइफ भी कर लिए जाते हैं, ज़िक्र अज़कार की भी कसरत होती है, कोई बहुत एक्सपोजर भी नहीं होता, कोई गिबतें भी नहीं बैठ बैठ के करते, लेकिन जिस दिन किसी खुशी में जाते हैं सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबसे अच्छे खाने खाते हैं, ये अलग बात है अब तो हम रोज़ ही खाते हैं और रोज़ ही अच्छे पहनते हैं, लेकिन चलिए शादी खुशी के लफ्ज़ के साथ एकदम खुशी का तसव्वुर तो आता है ना, क्या हम उन लोगों में तो नहीं हो गए कि जो जिस दिन अल्लाह की जितनी बड़ी नेमतें इस्तेमाल करे उतनी ज़्यादा नाफरमानी करे? एक मिसाल दे के आगे ले चलती हूँ, शादी का दिन किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सोचे जाने वाला दिन शादी का दिन होता है। पहले बच्ची छोटी सी होती है तो गुड़िया से खेलती है, पहले के दौर में जब लड़कियां गुड़िया से खेलती थी, अब नहीं खेलती इल्ला माशाल्लाह, और खेलती में तो वो बारबी टाइप की एक ऐसी औरत जिसको गुड़िया कहते भी शर्म आती है लेकिन जब लड़कियां गुड़िया से खेलती थी ना तो गुड़िया की शादी करती थी, गुड़िया गुड्डे की शादी, आप में से बहुत सारों ने की होगी, की थी ना, तब लड़कियाँ निस्वानियत पर पलती थी, उनका फेमिनिज्म बरकरार था, उनको पता था बड़े होकर भी यही कुछ करना है, हांडियाँ पकानी, चूल्हे चौंके, ये कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 5-6 साल पीछे चले जाइए, बच्चियों के खिलौने और थे, बच्चों के और थे, लड़कों के और थे, लड़कियों के और थे, जैसे कपड़े फ़र्क थे, आप कपड़े भी एक खिलौने भी एक, सबको टैब चाहिए, सबको वो स्पिनर चाहिए, क्या गेम्स खेलते हैं, फ़र्क हो गया ना, लेकिन चलिए वो जो हुआ उसको छोड़ दें। पहले बच्चियाँ गुड़िया की शादी करती हैं, ज़रा सी बड़ी होती हैं तो घर वालों को फिक्र लग जाती है ये बड़ी होने वाली है, बड़ी हो रही है, फिर जब खुद बंदा बालिग होता है तो उसको दिल में ख्याल और अरमान शादी होनी, लड़की की भी लड़के की भी, और फिर उसके बाद माँ बाप की फिक्रें अब हो जाए, लेकिन जब शादी का दिन आता है किसी की भी सर से पाऊँ, मेरा हाल है जूतियों से लेकर सर के परांदे तक दुल्हन नए कपड़ों में होती है, उससे ज़्यादा लाड ना माँ ने कभी देखे थे ना भाइयों ने जो उस दिन देखते हैं, ऐसी है ना, नेमतों में पल के नेमत प्यार भी मोहब्बत चलने ही भूल जाती हैं, ऐसे हाथ उठा उठा के लोग चलते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन उस दिन क्या हम अल्लाह को राज़ी करते? क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि जिस दिन हम सबसे ज्यादा नेमते लें उस दिन ही सबसे ज्यादा अल्लाह के हुक्म तोड़े? तो व नबलूकुम बिश्शर्री वल खैरी फितना, आजमाइश है। आज के बाद इसको याद रखना है, जब आपके घर में खुशी का वक्त आए तो याद रखिएगा इस बात को कि खुशी देने वाले को भूल नहीं जाना, ठीक है? हम शादियों के मौके पे क्या कहते हैं, सब खुश जाएं, खालाएं भी खुश जाएं, फूफियों को खुश कर दो, घर की मासियां खुश जाएं, ससुराल वाले तो खैर खुश ना गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सबको खुश करते हैं। लेकिन जिसने खुशी दी और वो फरिश्ते जो वो रहमतों के भेजता है उनको हम भूल जाते हैं। बात समझ गए? मेरे ख्याल इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। दो बातें समझी हमने, दिल के इम्तिहानात खुशियों में और गमों में। गम के इम्तिहान में पास होना निस्बतन आसान है और अक्सर हो भी जाते हैं। उस दिन सारे जाए नमाज उठा के खड़े हो जाते हैं क्योंकि मैयत पड़ी हुई है, करे क्या? उस दिन दिल टूटता है, उस दिन बैठ के बंदा कहता है आज के बाद मैंने कोई फजूल काम नहीं करना, मेरे हाथ से मेरा प्यारा चला गया। दो तीन दिन के बाद दोबारा हमारा दिल वही होने लगता है। आगे चलिए, तीसरी चीज़, दिल के इम्तिहानात में एक इम्तिहान इबादतों का इम्तिहान है, वर्शिप, नमाज, सदका, रोज़ा, हज वग़ैरह कह लीजिए कि आजमाइश और इम्तिहान के मुकाम है। इसमें आजमाइश क्या होती है? अल्लाह सुब्हान तआला ये देखता है, पहली बात ये देखता है कि इबादत के मौके पर तुम्हारे दिल में इखलास कितना है, फिर दूसरा ये देखता है कि दिखलावे के लिए तो ये नेकियाँ नहीं कर रहे, और तीसरा ये भी देखता है कि सुस्ती के मारे इबादत को छोड़ तो नहीं देते। देखिए अभी थोड़ी देर बाद नमाज का वक्त आएगा ना, और आप जानते हैं कि मगरिब का वक्त सारी नमाज़ों में से मुख्तसर वक्त होता है, जल्दी ख़त्म होने वाला होता है। अब ये नमाज का वक्त आपके मेरे लिए आजमाइश होगा, इम्तिहान है मेरे दिल का कि हम उठ के नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। कुछ लोग बड़ी बड़ी नेकियाँ कर देते हैं, तकरीरें कोई उनसे करवा लें, सुलें जाके लोगों की वो करा दें, देगों की देगें खाने पकवा लें, नमाज की बात है कहते मेरे गोडों में दर्द है, मैं थका हुआ हूँ, नमाज नहीं पढ़ती। कई सिस्टर्स ऐसी हैं कि अपने शौहरों की इतनी ज़्यादा नेकियों का जिक्र करती हैं लेकिन एंड पे कहती हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उनको वॉलंटियर करने का बड़ा शौक है, उनको नेकियाँ करने का बड़ा शौक है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। और अल्लाह ने भी कह दिया कि नमाज बड़ी बोझल है मगर खुशू करने वालों पर। तो क्या फजर की नमाज मेरे दिल का इम्तिहान नहीं था? क्यों अल्लामा इकबाल ने कहा कि हमसे कहाँ प्यार तुमको, नींद तुमको प्यारी है, यानी किस कदर गिरां तुम पे सुबहों की बेदारी है, यानी हर नमाज फजर हमारी नींद का इम्तिहान है। जोहर कामों में मसरूफ़ है, बच्चे भी आ रहे जा रहे और खाने भी पक रहे और एक शोर है, सफाइयाँ हो रही, अल्लाह कहता उठो नमाज पढ़ो, ये हमारे दिल का इम्तिहान है। तो हर नमाज, रोज़ा, हज, जब भी ये वक्त आता है ये अल्लाह ताला हमारे दिल को एक इम्तिहान में डालता है, ठीक है? पहली बात है कि अदा करते भी हो कि नहीं करते, दूसरी बात क्या है कि जब कर रहे होते हो तो किसके लिए करते हो, इखलास कितना है, सिर्फ अल्लाह के लिए करते हो? बस देखिए मिसाल देती हूँ, आज का दर्स नेकी का मौका है ना, जहाँ ये नेकी का मौका हमारे लिए एक खुशी का मौका बना तो वहाँ बहुत सारों के इम्तिहान का मौका भी बन गया। 10 किस्म के उज़र याद आते हैं हमें नेकियों के मौके पे। हम अपनी ज़िंदगी में कभी गौर करें ना, हम कभी इतने मजबूर नहीं हुए जितने हम नेकियों के मौके पे मजबूर हो जाते हैं। उज़र, बहाने, ऐसे लगता है दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूर औरत का अवार्ड इसको दे दो, इतनी मजबूर है। तो इम्तिहान होता है, तो आप सारे अगर इधर निकल कर आए हैं तो आज आप उस इम्तिहान में पास हो गए। ये दुआ कीजिए कि यहाँ से कुछ लेकर जाए, दिखावे के लिए तो नहीं नेकी की। अल्लाह सुब्हान तआला सूरह फुरकान आयत 23 में फरमाते हैं वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, हम इनके आमाल की तरफ मुतवज्जे होंगे, यानी हम ज़रा सी उधर तवज्जो करेंगे कि जो भी अमल उन्होंने किया है, फजअलनाहु हबा मंसूरा, हम उनके कामों को एक खाक बनाकर उड़ा देंगे, तो क्या पता चला, नेकी का कोई बड़े से बड़ा काम भी हो, लेकिन अगर हम दिखावे और रियाकारी की नीयत से करेंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। देखिए, आप सिंपल सी मिसाल से समझिए, आपके घर कोई मेहमान आए, उसके हाथ में थैला है, कोई बैग है अच्छा सा, आप क्या सोचते हैं कि वो आपके लिए गिफ्ट लाया, आपने जल्दी से पकड़ा हो, क्या ज़रूरत थी। अब वो कहता नहीं नहीं ले लीजिए, दे दिया। बाद में आपको कोई कहे जो उन्हीं के साथ आया था कि तुम इतनी जल्दी क्यों बोली, तुम्हारे लिए तो नहीं लाई थी वो, तो उन्होंने यहाँ से उड़ के आगे किसी जगह जाना था, प्रोग्राम था, कोई फंक्शन था, कोई दावत थी, उधर देना था, तुमने फटाफट ठर से ले लिया। अब मुझे जवाब दीजिए, आपको खुशी होगी उसकी, इतनी शर्म आएगी कि हाय मैं इतनी जल्दी क्यों बोली। वो हमारी नानियों दादियों में एक थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो सुनाती होती थी बात के कोई आया तो थैला था केलों का, उन्होंने एक साइड पे रख दिया, उसके बाद जैसे लोग एक रस्म भी है हमारे घरों में कि कहीं गए तो कुछ ले गए, उसके बाद वो उठ के चली गई, वो गई तो सारे केलों पे टूट पड़े, कहती सारे बच्चे बड़े केले खा रहे थे, 5 मिनट गुजरे तो बेल बजी, फिर डोर को क्या हुआ, वो मैं अपना एक थैला भूल गई हूँ, तो वो थैला ही गया होगा, केले तो नहीं थे ना। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरे के लिए हो और मजबूरन मरवतन कोई आपको दे दे तो आपको खुशी नहीं होती, रियाकारी भी यही है। लेके वो गिफ्ट दूसरों के लिए गया था, मजबूरी में उसको अल्लाह को देना पड़ता है। बात समझ गए, अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह कहते अपने घर रखो, मुझे नहीं चाहिए। दिखावा, रियाकारी, इससे जितना अपने आप को बचा लें। आज भी हम तकब्बुर पे थोड़ी सी बात करके आए हैं, बदर पे बात सुबह हुई है, याद रखिए ये हमारे अंदर के वो चोर हैं, हमारे सिवा और अल्लाह के सिवा इनको कोई नहीं जानता। अल्लाह खुद कहते हैं अला यालमु मन खलक, क्या वो ही ना जाने जिसने तुमको पैदा किया, और एक रब जानता है और एक बंदा जानता है। सूरत कियामत में अल्लाह ताला कहते हैं कि हर बंदे को खूब पता है कि वो क्या कर रहे हैं, हर बंदा खूब जानता है कि मैं कितने पानी में हूँ। ये अलग बात है वलहु अल्का माजीरा, लोगों के आगे उजर डाल दे तो कोई भी काम करें सिर्फ अल्लाह के लिए करें। सही रिवायत इब्ने खुजैमा की, अल्लाह के नबी ने फरमाया राजदारी के शिर्क से खुद को महफूज रखो, यानी अपने कामों को छुपाया करो, नेकी के कामों को राज में रखा करो। कुछ लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये राजदारी का शिर्क क्या होता है, आपने फरमाया एक आदमी खड़ा होता है सबके सामने पढ़ता है इसलिए कि लोगों की नज़रें इस पे लगी होती हैं, वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता, ये है राजदारी का शिर्क। यानी लोगों में नमाज पढ़ने बैठा तो लंबी नमाज पढ़ी कि लोग कहेंगे हाय देखो ये कितनी लंबी नमाज पढ़ रही हैं, और अकेले में ये कुछ नहीं होता। तो क्या पता चला, इबादत भी इम्तिहानों में से एक इम्तिहान है, कितने अच्छे तरीके से की, उसके अरकान पूरे किए कि नहीं किए, क्या सल्लु कमा रही तुमूनी उसल्ली पे अमल किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए, तो फिर इसमें आपके मेरे दिल का इम्तिहान है। यकीन करें दिन में हम 5 दफ़ा आजमाए जाते हैं, कभी सोचें हाँ अभी असर की नमाज जो पढ़ी होगी इससे पहले कितना को दिल था उसमें, कितना को उसमें रोए, हमें अल्लाह ने कहा याद आना है, हमें तो आयतें नहीं याद कौन सी पढ़ी थी, हमें तो दुआएं नहीं पता हमने क्या मांगी थी। मेरा नहीं ख्याल कि आज सुबह से लेकर जो 3 नमाजें पढ़ चुके हैं ना, फजर जोहर असर, मैं आपसे पूछूं आप मुझसे पूछे फजर में कौन सी सूरतें पढ़ी थी, पहली रकत में कौन सी थी, दूसरी में कौन सी। हाँ याद तब होगा जब हमेशा कुल अल्लाह ही पढ़ते हैं, फिर नहीं भूलेगा। तो ये इम्तिहान है, हम रोज़ एक खाना तो नहीं खाते, एक कपड़ा तो हम रोज़ नहीं पहनते, एक जैसे घर में मूड तो रोज़ नहीं होता, तो इबादत में रूह पैदा करनी है। सूरह हज आयत 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला की यनालहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह के पास तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अभी ईद कुर्बान आएगी देखिएगा, मेरा ले एक माह कुछ दिन रह गए, बड़े बड़े बकरे छतरे, फिर कोई ससुरालों में बकरे जाएंगे, कोई ईदें जाएंगी, तुमने क्या कुर्बान करना है इस ईद पे, आपसे मैं ही पूछ लूँ आज आपने इस ईद पे क्या कुर्बान करना है। आप कहेंगे बकरा, कोई कहेगा ऊँट, कोई कहेगा गाय में हिस्सा, अमूमन यही जवाब है ना। क्यों ना इस दफ़ा हम अपनी अना को कुर्बान कर दें, क्यों ना इस दफ़ा हम अपनी सुस्तियों को कुर्बान कर दें, ये कुर्बानी है वो श्रीबुफी कुलूब हिमुलेजल। जब बनी इसराइल के दिलों में बछड़े की मोहब्बत आ गई, अल्लाह ने उस बछड़े पे छुरी चलवाई। तो इस ईद पे हमने अपनी बुराइयों को कुर्बान करना है, अपनी खामियों को कुर्बान करना है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो बात इबादत की समझ आ गई है ना। हर इबादत, कुछ लोगों को 2.5% ज़कात देना मौत लगती है। हाय 2.5%, 2.5, तो भी वो 9.7 की तरह है। तुमने सारे खर्चे ज़कात से पूरे करने हैं, फिर भी शक है। लोग सवाल करते हैं, अच्छा उसको ज़कात दे सकते हैं, अच्छा उसको दे दें, उसको दे दें, फलां फलां फलां। अच्छा कई जगह डाउट होता है कि क्यों दो ना दो, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपने सिर्फ 2.5 में से सारा कुछ देना है। वो जो 97.5 या वो पीछे, वो किसको देना है? आप उसमें से 0.5 ही दे दीजिए, जिस पे शक है उसको ना दे ज़कात। तो ये ज़कात देना एक इम्तिहान है, और ख़ास तौर पे जब बाहर के मुल्कों वाले अपने मुल्कों में ज़कात दें और ज़रब लगा लें अपने मुल्क की करेंसी से, इतने लाखों की ज़कात बन गई। तो ये नहीं पता कि इससे कितने गुना आगे पड़ा हुआ है। चलिए एक बात हज की भी कर लूँ ऐसे ही। आप में से किस किस बहन ने हज किया हुआ है? ठीक है, आप में से किस किस ने अभी असर की नमाज़ पढ़ी है? फ़र्क आपके सामने। आज हम मुसलमानों में बेटियों की शादी का फिक्र गालिब है, बेटों की पढ़ाई गालिब है, हज जैसे फरीज़े को मुस्तकिल टालते रहते हैं। कोई कहता है कर्ज़ों में, कोई कहता है बच्चे पाल रहा हूँ, कोई कहता है बेटियों को पालना है, अब कोई कहता है घर बनाना है, अभी कोई कुछ। याद रखिए, अगर आप पे हज फ़र्ज़ है, पहली फुर्सत में कर लीजिए। ये अब आपको पता आप पे फ़र्ज़ है कि नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ है तो करना पड़ेगा, वरना बहुत सख्त वईद है। ठीक है।